किया था कि यमराज यमदूतों के साथ बात कर रहे हैं। यमदूत बड़े विचलित है और उनको थोड़ा डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि हम बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार मतलब मालूम है? मतलब कोई नौकरी नहीं, हमारा कोई काम ही नहीं रहेगा। क्यों? यदि हरे कृष्णा वाले इतना सब कीर्तन वीर्तन करते हैं, सब जगह फैलाते हैं, कि हमारा तो जहाँ हरि नाम होता है हमारा तो कोई काम ही नहीं होता है। हम तो उधर जा ही नहीं सकते। पहले कितना अच्छा था, लोग इतना पाप करते थे तो हमको बहुत अच्छा काम था। हमको हम जाके सबको खींच लेते थे, दंड देते थे। अभी सब भक्त 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 बन रहे हैं सब जगह, तो अभी क्या होगा हमारा? तो हमारी तो बेरोजगारी हो जाएगी। हमारे हरे कृष्ण आंदोलन इतना फैल रहा है, गांव में, शहर में, सब जगह, देश विदेश में फैल रहा है, तो क्या होगा हमारा? तो ऐसे वो बहुत चिंतित हैं सब लोग उधर, आप सब की वजह से। अरे आप सबने यमदूतों को कितना चिंतित बनाया। परंतु वास्तव में यमराज भक्त है ना भगवान के, वो तो बहुत प्रसन्न होते हैं भक्त बने तो। एक चीज जो बहुत दिलचस्पी की बात है कि यमराज की बहन कौन है?
यमुना
यमुना। और दोनों किसके बच्चे हैं?
सूर्यदेव के।
सूर्यदेव के। तो सूर्यदेव महान वैष्णव है कि नहीं? सबसे पहले भगवान ने उनको ही भगवद गीता बताया था, बराबर। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, विवस्वान मने वे प्राह मनोरिक्षा के वे ब्रवीत। तो भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने आगे चल के परंपरा में पढ़ाया, मनु को दिया इत्यादि। वो सूर्यदेव हनुमान के गुरु भी है, तो महान वैष्णव है। उनको दोनों बच्चे भी महान वैष्णव, यमराज और यमुना। परंतु ये दोनों बच्चे जो है उनके सेवाएं बहुत अलग अलग है। यमुना क्या करती है? अपने जल से सबका उद्धार करती है। जो भी यमुना के स्पर्श में आया क्या होता है? वो शुद्ध हो जाते हैं, कृष्ण भक्त बन जाते हैं। वृंदावन लीला में शामिल होती है यमुना देवी। परंतु यमराज की सेवा क्या है? बिल्कुल उल्टा। उनकी बहन सबको मुक्त कराती है और यमराज सबको बांध के रखते हैं, लेकिन दोनों सेवा कर रहे हैं। भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं यमराज, कि समझते कि मराठी में बोलो, हाँ समझते हैं ना सगाना। तो यमराज सबको बंधन, जो बंधे हुए हैं सबको दंड देते हैं, और जो यमुना है सबको बंद लोगों को मुक्त करती। तो ऐसे लगता है कि दोनों की सेवा बिल्कुल उल्टी है। यमराज जो कर रहे हैं यमुना उसके बिल्कुल उल्टा काम कर रही है। ये बांध के रख रहे हैं, ये छुड़वा रही है, लेकिन दोनों ही भगवान के आदेश पे कर रहे हैं, भगवान की सेवा के कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये चमत्कार है। तो वैसे ऐसे एक नाटक के तौर से अच्छा है, कभी इसके ऊपर भी नाटक कर सकते हो कि कभी यमदूत बड़े चिंतित होगा, क्या होगा, अभी हमारा कोई काम ही नहीं रहेगा। तो नाटक हुआ तो किस किस ने किया नाटक में, भाग कौन कौन लिए? हाथ ऊपर करो। अरे वाह, अरे वाह, चार चार भक्त। क्या क्या भूमिका निभाया किसने, क्या क्या भूमिका निभाया?
परिवर्तन नाटक में सरस्वती कोऑपरेटिव, महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी,
माया कोऑपरेटिव सोसाइटी,
महिला महिला
महिला
महिला
महिला को। अच्छा, मैं सोचा माया को।
वहाँ पे मारुति प्रभु जॉब को जाते हैं,
तो क्या करते हैं?
जॉब जॉब वहाँ पे नौकरी करते हैं।
अच्छा,
वो सोसाइटी में।
अच्छा,
मतलब
तो क्या होता है?
सही में जॉब कर रहे हैं वो, नाटक में भी जॉब करते हैं।
अच्छा,
तो वहाँ पे वो जाते हैं तो ऑफिस का वातावरण बहुत भौतिक प्रभावित रहता है,
अच्छा
तो भौतिक बातें वो सभी। लेकिन ये भक्त है तो वो वातावरण में उनको अच्छा नहीं लगता, जमता नहीं। तो वहाँ के लोग चाय पियो, सिनेमा चलो, पार्टी चलो, ऐसे उनको परेशान करते रहते हैं। फिर बाद में वो बहुत, उनको भक्ति भी करना है और भगवान की सेवा में कंटिन्यूअस लगना भी है, तो इसलिए बहुत चिंतित हो जाते हैं। फिर बाद में गोकुलधाम में आकर हरिराम प्रभु को मिलते हैं। फिर
हरिराम प्रभु का रोल किसने किया? खुद हरिराम प्रभु ने किया कि
नहीं,
राजेश्वर प्रभु हरिराम प्रभु बन? अच्छा, फिर
फिर बाद में वो उनको बताते हैं कि कैसे भक्तों की संग में आने से परिवर्तन होता है। फिर वो नाटक में, और एक नाटक मृगारिका, फिर वो मृगारिका कथा उनको सुनाते हैं कि कैसे
अच्छा
नारद मुनि की आदेश को पालन करके मृगारी एक अच्छा भक्त बन गए, और उनकी जो भी आवश्यकताएं थे वो काम करके पूर्ण नहीं हुए, भगवान का भक्ति करके ही पूर्ण हो गए। तो इसलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्तों की संग में, भक्ति से जुड़े रहिए, तो जैसा संग वैसा रंग। अगर आप ऑफिस में ज़्यादा समय दोगे, उनके संग में रहोगे, तो आप ऐसे बनोगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय गोकुलधाम को दो, गोकुलधाम के भक्तों को दो, सेवा के लिए दो, क्रमशः उसको कम करो।
वाह, चार चार
ये प्रभाकर साहब और वो मनोज साहब और हमारा ये सुनील ऑफिस बॉय, ये पहला नाटक था हमारा। और दूसरे नाटक में मारुति प्रभु वसुदेव बने थे, और सुनील प्रभु देवकी, और मनोज प्रभु महाराज कंस।
अच्छा
और जांबूटी के दो भक्त थे, वो पहरेदार बने।
अच्छा अरे वाह, कृष्ण जन्म किया और कृष्ण कौन बने?
वो एक
गोपीनाथ को ले, गोवर्धन के लिए क्या?
वो सोए थे।
उनमें से एक को कृष्ण बनाना चाहिए था।
वो एक शॉल को ये लेके बनाए।
बहुत अच्छा। तो नाट्य लीला हुआ, महिला कोऑपरेटिव, ऐसे हम लोग आगे चल के ना, हम लोग भी करेंगे ये सब गांव में आगे चल के, जैसे जैसे इधर और सेट हो जाएगा ना, तो बहुत ज़रूरी काम है, करना है। अच्छा, तो नाट्य लीला हुआ, अभिषेक, अभिषेक प्रवचन, कीर्तन, खूब कीर्तन किया ना सबने,
दिन
हाँ दिन
भर कीर्तन, दोपहर से दिन
भर।
भर कीर्तन और भजन भी गाए, वैष्णव
भजन भी गाए।
भजन
कौन से गाए?
यशोमती नंदन, फिर कृष्ण जिनका नाम है,
जय कृष्ण,
जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, फिर दशावतार स्तोत्र।
बहुत अच्छा।
और किचन में उस दिन अच्छा फीस प्रसाद भी बनाए थे, श्रीमान श्री राधा कुंज बिहारी प्रभु, उद्धव हरि प्रभु, देव की तनय प्रभु, अर्जुन प्रभु, समस्त वैष्णव प्रभु, अंजनानंदन प्रभु, हरिराम प्रभु, ब्रजेश कृष्ण
अंदर है
प्रभु।
क्या दोनों?
अंजनानंदन प्रभु गोवा गए महाराज,
अच्छा
हरिराम प्रभु आने वाले थे।
अच्छा, तो अच्छा बढ़िया प्रसाद बनाया
हाँ।
रात को सबने एकदम अच्छा प्रसाद लिया।
मुरली वाले प्रभु भी थे अभिषेक का पूरा नियोजन करने के।
अच्छा,
दोनों ना नाटक के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर।
अच्छा प्रभु
सब भक्त का आइडिया।
चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे बहुत नाट्य लीला करते थे भक्तों के संग में। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत भूमिका निभाई, कभी राम, कभी कृष्ण लीला, कभी ऐसे तरह तरह के बहुत करते थे वो। नित्यानंद प्रभु भी करते थे, बचपन में भी करते थे और बड़े होकर भी जगन्नाथपुरी में भक्त लोग सब करते थे। प्रभुपाद को भी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए भक्तों के द्वारा नाटक करना ये बहुत अच्छा है। नाट्य लीला, नाटक करना नहीं, नाट्य लीला करना। बहुत अच्छा। तो दिन भर इधर चला सब, कितना सुंदर है यह, बहुत सुंदर लगता है, देखो वाह। यही सच्चा ऐश्वर्य है, ऐसा सब वो सोना चांदी लगा के भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। वो रत्न मोती वोती सब आवश्यक नहीं है, खरोखर ऐश्वर्य हेच है। सच्चे सौंदर्य के लिए, सच्चे भक्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमको केवल सोना चांदी और हीरे मोती सब चाहिए। ये प्रकृति के जो सरल सरल साधारण सब चीज़ें हैं वो भी भगवान को बहुत पसंद करते हैं और एक मंगलमय वातावरण का निर्माण करते हैं। ये तो भाई पाना, वेगवेगे प्रकार की पाना, पानाच आहेत ना, एका आहे, थोडे फुलं आहेत, पानं आहेत, थोडे झाडं आहेत, बस। आणि काय पाहिजे, फल बिले काय, क्या डेकोरेशन श्रृंगार है।
अर्जुन अर्जुन वृक्ष के फल,
अर्जुन वृक्ष
थोड़े पेड़ फल वल भी लगाने चाहिए, थोड़े थोड़े तो उगाने चाहिए ज़्यादा, ताकि अभी बाहर से ला के नहीं रखना इधर।
भोपला वगैरह भी नहीं, वो बहुत होता है।
भोपला क्या है, थोड़ा खतरा है, टंगा के रखा किसी के सर पे गिर जाए, समस्या है ना। लेकिन वहाँ बेलगाम मंदिर में लगाते हैं पूरा, वो कलिंगड़ और तरबूज खरबूजा है ना, वो सब मार के रखते हैं। जयपुर तक महाराज एक बार आए तो बोले पहली बार जीवन में मैंने देखा कि तरबूज भी ऊपर। और फिर प्रभुपाद के आविर्भाव दिवस पे सब भक्तों ने बोला अपना अपना विचार प्रभुपाद के बारे में।
कल शाम को ऑफरिंग्स थी,
कल शाम को किया प्रभुपाद का अभिषेक किया,
अभिषेक नहीं,
अच्छा केवल गुणगान किया,
गुणगान किया
सुबह ने लीलामृत से
पढ़ा कुछ
बताया।
अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। उत्सव मानव प्रिय है, मनुष्यों को उत्सव बहुत प्रिय होता है, उत्सव के बिना कुछ ठीक नहीं लगता है। समय समय पर उत्सव होना चाहिए जिसमें सब लोग मिलते हैं, हर्ष उल्लास का वातावरण रहता है, सबको सेवा का अवसर मिलता है। सबने सेवा किया ना, माता जी उनको भी मिला ना सेवा, मिला सबको।
माता जी ने पूरा दिन भर भर माला बनाया।
अच्छा कौन सा माला?
फूलों के, फूलों के,
वो अंदर के लिए,
दो दिन के लिए अलग अलग थे।
अच्छा अरे वाह, तो उत्सव में सबको, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, सबको अवसर मिलता है सेवा करने के लिए। जितने भी भक्ति के अंग हैं वो सारे अंगों का पालन उत्सवों में हो जाता है। श्रवण कीर्तन स्मरणम अर्चनम वंदनम है ना, सब हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है उत्सवों के बारे में। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं उत्सवों के बारे में, माधव तिथि
भक्ति जननी,
भक्ति जननी। माधव तिथि अर्थात जो तिथि भगवान माधव या कृष्ण के जन्म आदि के बारे में है, जैसे जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, रामनवमी है, तो ये क्या है, भक्ति जननी, भक्ति की माँ है। दूसरे शब्दों में जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है उसी प्रकार से ये उत्सव भक्ति को जन्म देते हैं। उत्सव में भाग लेने से भक्ति का जन्म होता है हृदय में। तो इसलिए उत्सव हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, समय समय पर मनाना। और भगवान की योजना से ऐसे है कि प्राय हर हफ्ते हर महीने में एक तो उत्सव होता ही होता है, कई महीने में एक से ज़्यादा दो तीन भी होते हैं, जैसे कार्तिक में तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन यहाँ देखो जन्माष्टमी एक के बाद एक लगातार आ जाते हैं। आप श्रृंखला बताओ उत्सवों के।
बलराम जयंती,
कृष्ण जन्माष्टमी,
प्रभुपाद
व्यास पूजा, फिर
राधाष्टमी,
राधाष्टमी के बाद शरद पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा,
फिर कार्तिक महीने में सब कुछ, उसके बाद
पुष्प अभिषेक
ठीक है, वो तो इतना बड़ा नहीं, गीता जयंती आ जाता है, गीता जयंती, फिर पुष्प, वास्तव में नहीं, वो पुष्य नक्षत्र जब होता है ना उसके समय करते हैं। लेकिन क्योंकि फूल भी अर्पण हुआ, उसमें घी अर्पण करना भगवान को, पुष्प अर्पण करना, इसलिए वो पुष्य की जगह पुष्प आ गया उसमें, तो सब लोग पुष्प बोलते हैं। वास्तव में पुष्य नक्षत्र का नाम है पुष्य, तो पुष्य नक्षत्र में घी फूल सब अर्पण करते हैं भगवान। लेकिन वो इतना बड़ा उत्सव ऐसे प्रसिद्ध उत्सव नहीं है, गीता जयंती है, फिर उसके बाद
नित्यानंद त्रयोदशी,
गौर पूर्णिमा, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, ऐसे देखो तो साल भर में कितने सारे उत्सव हैं। तो उत्सव भक्तों के प्राण है और उत्सव भगवान से अभिन्न है, क्योंकि उत्सव के द्वारा ही भगवान प्रकट होते हैं। परंतु वैसे एक और रहस्यमय बात है, सुंदर बात है, कि आप सब जैसे भक्तों के लिए उत्सव केवल महीने में एक बार होता है,
हर दिन
प्रतिदिन होता है। क्यों?
प्रतिदिन हम भगवान का अभिषेक, दर्शन, कीर्तन, महाप्रसाद, भक्तों का संग, भागवत श्रवण,
बस यही तो उत्सव है ना। जो भी चीजें उत्सव में होती हैं वो आप सब जैसे भक्त रोज करते हैं। रोज भगवान का दर्शन, आरती, कीर्तन, जप, प्रसाद, कथा, केवल इतना है कि विशेष जो उत्सव होते हैं उनमें श्रृंगार वगैरह सब ज्यादा रहता है, एक वातावरण उत्सव उत्साह जो है वो थोड़ा अधिक हो जाता है, बहुत अधिक संख्या में भक्त भी आते हैं। परंतु वास्तव में प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से हमारे संस्था की व्यवस्था की है और जो कार्यक्रम की प्रणाली आदि बनाई है वो सब ऐसे ही है कि प्रतिदिन उत्सव। शुकदेव गोस्वामी क्या बताते हैं 9वें स्कंद में, पूरा श्लोक, बहुत अच्छा। अभी शब्द भेद करके बताओ।
यस्या मतलब जिनका, आनंद मतलब इसके गर्दन के ऊपर,
जिनका मतलब कौन है, किन के बारे में चर्चा हो रही है,
कृष्ण
के बारे में।
मकर कुंडल चारों कर्ण जिनके कान के ऊपर फिश के आकार के कुंडल जो है,
मगरमच्छ के आकार के
कुंडल जो है वो लटक रहे हैं। इससे आनंद मकर कुंडल चारों कर्ण ब्राजत कपूल
चारों कर्ण जो यस्य आननम, आननम अर्थात चेहरा, यस्य आननम मकर कुंडल, तो मकर कुंडल कर्णों पे है, भगवान कृष्ण के कुंडल जो है मकर के आकार के हैं और चारु और उनके चेहरे को और भी सुंदर बना रहे हैं। वो कुंडल और अपने आप में सुंदर है लेकिन उसको पहनने से भगवान का मुखारविंद और भी सुंदर लगता है। तो यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण, फिर
राजत मतलब बहुत सुंदर कपाल,
नहीं कपोल और कपाल में अंतर है। कपाल ये होता है और कपोल गाल होता है। भ्राजत मतलब चमक रहे, तेजस्वी एकदम प्रकाशमान। भ्राजत कपोल तो भगवान कृष्ण का गाल चमक रहा है और सुभगम अर्थात नहीं सुभगम फिर
सुविलास
हासम, क्या अर्थ है?
भगवान का जो हास्य है वो अत्यंत मधुर है।
हाँ भगवान का हास्य अत्यंत मधुर है। फिर नित्योत्सवम,
तो ये सब जो चीजें हैं ये एक नित्य उत्सव की तरह है, परंतु ना
कौन सी चीजें
जो पहले दो लाइन में है।
बराबर बराबर बराबर,
नित्य उत्सव ये नित्य उत्सव की है की तरह है ना है, परंतु परंतु तत्रुपु तत्रुपु ने संतुष्ट नहीं हो रहे। ऋषि भी पीड़ा दृश्य से ये सब जो दर्शन है भगवान का ये सब पी रहे परंतु तो भी संतुष्ट नहीं हो रहे।
क्यों इतना खराब है?
नहीं नहीं
क्यों संतुष्ट नहीं?
वो चौथी लाइन में नारो नराश्य को दोनों कैटेगरी के लोग नारो और नरवी
नारियो नारियो नराश्य
पुरुष और स्त्री दोनों भी गोप और गोपिया दोनों भी नारो नराश्य मुदिता यहाँ पे भी बोल रहे सेटिस्फाइड मुदिता है ना सेटिस्फाइड परंतु कुपिता कुपित हो रहे निमेश मतलब भगवान ब्रह्मा जी ने जो आंखें बनाई है और उसमें जो पंखुड़ियाँ हैं वो बार बार ऊपर नीचे होती रहती है। इसके इसकी वजह से जो नित्य उत्सव है उसमें थोड़ी बहुत बाधा रह आ रही है। एक एक निमेश काल के लिए नित्य उत्सव है, एक निमेश काल के बाद नित्य उत्सव नहीं है, फिर से नित्य उत्सव है, फिर से इसकी वजह से कुपित हो रहा है ब्रह्मा जी के ऊपर।
वो कह रही है नित्योत्सवम, ये जो आपका सुंदर दृश्य है आपके रूप को जब हम देखते हैं तो हमारे लिए नित्य मतलब प्रतिदिन एक उत्सव है। तो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करना ये एक उत्सव अपने आप में है। तो क्योंकि हम लोग प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो नित्योत्सवम, वास्तव में ये गोपियों के बारे में नहीं है, ये मथुरा के निवासियों के बारे में, ये नौवें श्लोक के अंत में आता है। न तत्रिप हो, संतुष्ट नहीं है, इसके लिए नहीं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि उनको और चाहिए इसलिए संतुष्ट नहीं, इसलिए वो थोड़े बेचैन है अभी कि जितना मिला उतना हमको काफ़ी नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस दृष्टि से वो बोल रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है। असंतुष्टि दो कारण से हो सकती है, एक कि जो हमको मिल रहा है हमको अच्छा नहीं लगता, अरे रे रे छी 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 गता हमको नहीं लग चाहिए, दूसरा कि इतना अच्छा लगता है कि हम चाहते हैं कि बंद ना हो, चलता रहे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इस दृष्टि से ये मथुरा के निवासी असंतुष्ट हैं, बेचैन है थोड़े, क्योंकि हमको और चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता उसको आदत है ना, तो पीता रहते पे संतुष्ट नहीं, और चाहिए उसको और चाहिए और चाहिए। तो ये भी एक दिव्य नशा है जिसका अनुशीलन करना हमारे जीवन का उद्देश्य। तो न तत्रिपो दृश्य भी ही मतलब आंखों से पिबंत्य है, वो पीते हैं, क्या पीते हैं? भगवान के सुंदर रूप का जो अमृत है उसका पान वो आंखों से करते हैं। दृश्य भी ही पिबंत्य नारियो नराश्च तो नर नारी दोनों जो है मुदिता है। मुदित मतलब बहुत प्रसन्न है, कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन प्रतिदिन करके बहुत प्रसन्न है। फिर भी कुपिता, मुदित भी है कुपित भी है। मुदित मतलब आनंदित और कुपित मतलब क्रोध आया उनको। क्यों आया?
निमेश्च,
ये जो निमेश है वो बार बार बीच में बंद होते रहते हैं। इसे पलक, आंखों की पलकें बंद होती है ना, खुलती हैं बंद होती हैं, तो इसलिए जो नर और नर नारी हैं वो बोलते हैं कि क्या ब्रह्मा जी ने कहाँ से वो डिग्री के लिए पता नहीं उनको काम ठीक से आता नहीं है क्या? ये आंखों का उद्देश्य क्या है? क्या आंखों का उद्देश्य?
भगवान के दर्शन करना,
भगवान का सुंदर रूप देखना, बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं आंखों का उद्देश्य। 24 घंटे केवल भगवान का रूप देखते रहना देखते रहना। परंतु ये ब्रह्मा जी ने देखो क्या गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ किया? अभी आंखों का पलके बना रही ना, पलके में हमको आंख बंद खुला बंद खुला बंद करना पड़ता है, तो एक क्षण के लिए जब हम बंद करते हैं तो उस समय दर्शन नहीं होता है। तो देखो कितना अन्याय किया ब्रह्मा जी ने हम सबसे। अभी हमको ऐसे करके देखना मतलब मुश्किल है, आंखें बंद हो जाती हैं। तो ब्रह्मा जी को आंखें ऐसे बनाने चाहिए थी कि बिना आंखों के पलके बंद हुए निरंतर हम दर्शन भगवान का कर सके। इसलिए कुपिता, इसलिए कुपित हो गए वो, क्रोधित हो गए। तो इसलिए जो मथुरा के निवासी हैं और जो वृंदावन के निवासी तो है ही है, परंतु उनके लिए प्रतिदिन एक उत्सव होता है। इसलिए जो हरे कृष्ण भक्त होते हैं, खास करके जो मंदिरों में रहते हैं और घरों में जो रहकर वो ऐसा करते हैं, तो वो भी उनके लिए भी होता है। तो प्रतिदिन उत्सव है, तो आप सबके लिए उत्सव कब है? प्रतिदिन है, परंतु खास उत्सव ऐसे होते हैं। तो जब रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 साधन भक्ति के अंगों का वर्णन करते हैं, उल्लेख करते हैं, तो उसमें एक है कि हमको उत्सवों को मनाना चाहिए। जो खास खास उत्सव होते हैं ना, खास करके उनको मनाना बहुत आवश्यक है। जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, ये भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है उत्सवों को मनाना। और उत्सवों में क्या होता है कि सबको आनंद होता है। दुर्भाग्य की बात है आजकल जितने भी उत्सव हैं उनमें जो आध्यात्मिक एक भाव है, भक्ति का भाव है, वो नहीं रहा। बाहर की दुनिया में देखेंगे ना, तो दिवाली में क्या है? पटाखे फोड़ना, बस ये दिवाली, फट 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 फोड़ते रहना। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, किसके लिए करते हैं, जो एक भक्ति भाव है उस उत्सव में वो नहीं रहता है। नए कपड़े मिलेगा ना हमको, नया कपड़ा मिलेगा और थोड़ा सब लोग मिठाई देंगे, थोड़ा सब जगह घर में बांटेंगे, मिठाई खाने को मिलेगा, हो सकता है नए वस्त्र मिलेंगे और खूब धमाका करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, ये दिवाली। परंतु दिवाली उत्सव के पीछे क्या इतिहास है, उसका आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, ये लोग नहीं जानते। उसी तरह से होली, होली में क्या करना, बस वो तेल वेल का पेंट वेंट लगा के सबके चेहरे पे लगा देना, और जो भी बेचारे गाड़ी मोटरसाइकिल में जा रहे हैं गुब्बारे से मारना उनको, बेचारे सबको गीला कर देना जो भी है, और खूब धमाल करना, हंगामा करना, ये होली। परंतु होली के पीछे क्या उत्सव है, क्या आध्यात्मिक भाव है, किस लिए मनाते हैं वास्तव में नहीं पता। अब गणेश चतुर्थी में भी बम्बई में कितनी बार हमने देखा, वो लेके जाते हैं गणेश जी को, थोड़ा कम से कम गणेश जी का स्तुति तो करना चाहिए ना। यदि आप देवताओं के भी उपासना करो तो अच्छी तरह से करो ना। सबसे अच्छा आप कृष्ण की भक्ति करो, लेकिन देवताओं की भी करनी है तो कम से कम थोड़ा अच्छी तरह से करो। वो क्या करते हैं, कितने बार मैंने देखा है, वो शराब पी के आते हैं और वो शराब पीकर कितना गंदा नृत्य करते हैं सड़क के ऊपर, और फिर वो गाने भी कैसे लगाते हैं, वो सिनेमा के गाने जिसका कोई धर्म से संबंध नहीं है, पूरा वातावरण बिगाड़ देते हैं ये लोग। और देखने वालों को क्या लगता है कि यही धर्म है ना, दंगा करो हंगामा करो, सड़कों पे जाके ऐसे बस दारू पी के नाचो, यही धर्म। तो फिर कैसे लोग रहेंगे धर्म में, क्योंकि एक आध्यात्मिक ज्ञान उत्सव के पीछे नहीं रहता है, जो उद्देश्य है उसका नहीं मालूम। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रवचन के ऊपर, कथा के ऊपर, पुस्तकों के ऊपर इतना जोर दिया कि केवल उत्सव मनाना इतना काफी नहीं है, उत्सव में थोड़ी कथा भी होनी चाहिए, थोड़ा श्रवण भी होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए कि ये सब क्या है, क्यों करते हैं हम ये उत्सव, हमें उत्सव साजरा का करतो, त्याचे पाठीमागे इतिहास काय आहे, त्याचं ज्ञान काय आहे, हे सगळं आम्हाला जाणून घेतलं पाहिजे। आता दुर्भाग्याची गोष्टी आहे की लोकांना माहीतच नाही आम्ही का करतो दिवाळी होळी जन्माष्टमी, पण मग काय करायचं, आम्ही एका वेळ खांद्यावर चढायचं ते हंडी फोडायची, आम्हाला पैसे मिळू ना तिकडे जे असतात जो तोडते हैं उनको मिलता है, इतना इनाम मिलता है, फिर स्पर्धा होती है, वो कसरत जैसे अच्छा हो जाता, ठीक है कम से कम उतना तो करते हैं ना, दही हंडी याद करते हैं ना कृष्ण को, गोविंदा ला रे कम से कम गोविंद का नाम लेते हैं, कृष्ण का माखन चोरी लीला का स्मरण करते, उतना तो है कम से कम। परंतु कथा जब नहीं होती है ना, प्रवचन नहीं होता है, ज्ञान का वितरण नहीं होता है, तो सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म धर्म का जो ह्रास हुआ है, ह्रास मतलब क्या, विनाश, विनाश हुआ तो इसलिए कि ज्ञान का वितरण और उसका पालन नहीं हुआ। जब ज्ञान का वितरण नहीं होगा तो पालन कैसे होगा, जब लोगों को पहले पता होना चाहिए ना कि धर्म क्या चीज है, तब जाके उसका पालन कर सकेंगे ना। लेकिन धर्म का स्पष्ट ज्ञान ही नहीं है तो पालन कैसे करेंगे। इसलिए उत्सव के समय और प्रतिदिन हमको प्रवचन, कथा, प्रभुपाद का पुस्तक जो है भागवत गीता, ये केंद्र बिंदु होना चाहिए। जैसे जैसे लोगों की समझ है वैसे हम बोल सकते हैं, मराठी में बोलो, कन्नड़ में बोलो, तमिल में बोलो, कोई भी भाषा जो जहाँ के स्थान में लोग हैं वैसे बात करो, लेकिन वही संदेश दे दो भगवान का। तो उत्सव से क्या होता है, एक क्रांति होती है, हृदय का परिवर्तन होता है। तो आमटे वगैरह में हुआ जन्माष्टमी अच्छी तरह से, आमटे मध्ये झालं उत्सव, छान झाला, काय काय सगळं अभिषेक कीर्तन, अच्छा बेळगावपासून आले, छान छान। जन्माष्टमीच्या दिवशी छान छान,
300 लोक,
300 भक्त आले,
बाराचा एक पर्यंत 300 लोक होते सर्व,
होय छान छान,
वेळाची वेळ झाली,
पहिला दिवस
पहिलीच
म्हणजे ह्या वर्षी झाली याच्या पाठीमागे होत नव्हती. इकडं शेवेला इकडे गोकुलामला नंतर बेळगावला जात
होते. अच्छा अच्छा. आता पहिल्यांदा गावामध्येच केलं.
गावामध्ये
पहिले सगळे इकडे येत होते. आता इकडे बंद केलं म्हणून तिकडे. आणि गवसेमध्ये पण झालं का? नाही. आणि पेटणीमध्ये पेटणीमध्ये काय झालं? अच्छा. चकले
चिकले में वो कुछ कुछ घरों में करते हैं, तो वो बुलाने के लिए आए थे लेकिन हमारे यहाँ पर फेस्टिवल था इसलिए नहीं जा पाए.
तो चान उत्सव एक ऐसी चीज होती है, सब लोग राह देखते हैं कब आएगा है कि नहीं. एक तैयारी अस्ती मानसिक की है, एक अपेक्षा अस्ती कभी येल उत्सव. हाँ, जन्माष्टमी कभी है, कभी रामनवमी का तो उत्सव येणार आहे. आनंद से अनंत का जीवन, ऐसे ही यही जीवन, ऐसे ही हम जीवन कटाएंगे. कितना सेवा, देखो ये सब श्रृंगार भी करने के लिए कितना आनंद से सेवा करते सबने. हमको सब कुछ चाहिए ना कुछ करने के लिए. इंद्रियों को भी कैसे तो भगवान की सेवा में लगाना है ना, यही भक्ति है. तो वैदिक सभ्यता में कितने अवसर प्रदान किए हैं भगवान ने सबकी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, हमारे कलाओं को, योग्यताओं को सब लगाना. रांगोळी वगैरह पण झाले ना छान. वाह बहुत अच्छा. दीप दीप भी प्रज्वलन किया सब. सगळ्यांना आनंद आला ना. प्रसाद क्या 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 था प्रसाद में? दादा कुंजी बिहारी पे वो क्या क्या बनाया प्रसाद? क्या आने क्या क्या बनाया?
वराई पुलाव और रसम था और सब्जी बनाई थी आलू की. भोपला खीस के कच्चा भोपला हमारे के था इसके, उसको दूध में उबाल कर स्वीट स्वीट बनाया. बहुत टेस्टी
बना. अच्छा, अरे वाह.
सभी लोग आनंदित हो गए, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा स्वीट खाया.
उसमें क्या किया? भोपले का छिलका भी डाला?
छिलका भी खींच लिया. कच्चा भोपला था हमारे खेत का ही, तो पूरा खींच लिया उसको. और जैसे गाजर हलवा बनाते हैं ऐसे दूध में उबाल के, बहुत टेस्टी बना.
अरे वाह. मुझे याद है हम लोग जब मैं पहला नया ब्रह्मचारी बना ना, तो हम लोग कॉलेज में जाते थे प्रचार के लिए. तो हम लोग हलवा बना के ले जाते थे, खुद हलवा किचन में बनाना, फिर बना के उसको बाल्टी में उठा के ले जाते थे हम लोग वो बाल्टी वगैरह में. तो शीरा, यहाँ शीरा बोलते हैं ना, फिर वहाँ हलवा बोलते. तो उसमें उसको मीठा तो होता था, लेकिन उसको हम क्या करते थे कभी कभी, मौसम्बी का छिलका या केले का, या केले का नहीं, संतरे का छिलका ऐसा उसको चीर के उसमें डालते थे. बड़ा ऑरेंज फ्लेवर आता था उसमें, मौसम्बी का फ्लेवर आता था, इतना स्वादिष्ट हो जाता था. लेकिन उसके बाद अभी कोई ऐसे करते नहीं, हमने सुना नहीं. हम लोग करते थे वैसे, इतना स्वाद उसका. वो यार कोशिश करके देखो, हलवा बनाते समय ऐसे भी छिलका भी, इसका स्वाद भी अच्छा होता है कभी कभी, करके देखो. एक बार कोशिश करके देखो. और जब ये विषय में है, थोड़ा विषयांतर करता हूँ, फिर भी बाद में फिर से उत्सव में आते हैं कि फल को कैसे खाना चाहिए, सब्जी को कैसे खाना चाहिए, ये भी एक विज्ञान है, सबको जानना चाहिए. अभी आपको शायद पता हो या ना हो कि जो फल या सब्जी होता है उसके छिलके में लगभग 40% सत्व होता है. जो पौष्टिक तत्व होता है ना उस सब्जी में या फल में, 40% उसका वो छिलके में रहता है, आपको पता है। थोड़े ऐसे छिलके हैं जिनको हम नहीं खा सकते, जैसे संतरा है, मौसम्बी है, केला है, ये सब हम नहीं खा सकते, परंतु ऐसे कई फल हैं जिनके छिलके खाए जा सकते हैं, जैसे
चीकू,
आम सकते हैं, लेकिन लोग खाते भी हैं।
हम लाकर उसको पका देते हैं, उसको खाते,
लेकिन खा सकते हैं तो बढ़िया होगा, क्योंकि उसमें बहुत सत्व है। ठीक है, चीकू, पेरू, सेब, सफरचंद, कई बार क्या होता है, सफर एप्पल जो होता है उसका भी छिलका काट के लोग खाते हैं, उसका निकाल के चीर के खाते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए ऐसे। तो जिस जो फल होते हैं जिनके छिलके खाए जा सकते हैं उनको खाना चाहिए, जो छिलके खाए नहीं जा सकते ठीक है कोई बात नहीं, वो नहीं खाओ। लेकिन ये पहली बात फल और सब्जी के बारे में, हाँ, जिनके छिलके खाए जा सकते हैं वो खाओ। क्यों खाना चाहिए?
40% पौष्टिक,
40% पौष्टिक तत्व जो है वो छिलके में रहते हैं। तो हम छिलका निकाल देते हैं तो 40% गया हमारा उसमें से पौष्टिक तत्व, पोषण जो है गया, पहली बात। दूसरी बात, फल हो या सब्जी, खास करके जब हम बाज़ार में खरीदते हैं, बाज़ार में खरीदने में क्या होता है, वो सब रासायनिक कीटनाशक और ये वो सब डालते हैं ना, खास करके द्राक्ष में और एप्पल में, उसको चमकाने के लिए क्या क्या, सब्जी में भी कितना कुछ करते हैं। कल में थोड़ा 2-3 महीने पहले किसी ने मुझे वीडियो भेजा, वो पालक वगैरह को एकदम पुराना जूना हो जाता है ना, एकदम वो हो जाता है, मुरझा जाता है, तो उसको कुछ रासायनिक इसमें डुबोते हैं और फिर एक घंटे के एक दो मिनट के बाद वो इतना ताज़ा लगने लगता है, परंतु ये तो विष है, पूरा विष का विष ही है। तो ये हरी सब्जियां होती हैं, हाँ, एप्पल वगैरह होते हैं, द्राक्ष होते हैं, उनको वो बहुत जहरीला बनाते हैं, विषैला बनाते हैं इस सब रासायनिक पदार्थों से, तो इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए, सब्जी हो या फल हो। और यदि हम लोग भी बिना रासायनिक पदार्थ के बनाते हैं, परंतु मिट्टी विट्टी कीचड़ ये वो सब लगता है ना, इसलिए सबको धोना चाहिए पहले। और यदि हम लोग बाहर से लाते हैं, बाज़ार से, तो क्या करना चाहिए, उनको नमक के पानी में थोड़ा देर रखना चाहिए, आधा घंटा। क्यों? तो क्योंकि जो रासायनिक उसमें पदार्थ है ना, वो सब उसका असर निकल जाएगा, और फिर वो नमक के पानी से निकाल के फिर सादा पानी में धो के फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात ये है कि जब फल को खाना है तो हम कच्चा ही खाते हैं ना, तो यदि काटना है फल को तो खाने के तुरंत पहले काट के तुरंत खाओ, क्योंकि एक बार काट लिया, चाहे सब्जी हो फल हो, तो उसको काट लिया, ज़्यादा समय तक उसको ऐसे ही रखा तो हवा में प्राणवायु के कारण, ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, उसका जो पौष्टिक तत्व है वो निकल जाता है उसमें से, वो प्राणवायु ऑक्सीजन उसको खींच लेती है, इसलिए उसका पौष्टिक तत्व जो है वो कम हो जाता है फल का। जैसे समझ लो आपने पेरू एक 4-5 घंटे आगे काट के रख दिया, 4-5 घंटे बाद में खा लिया, तो उसका 50% वो गया गया। एप्पल खा लिया, उसका रंग बदलता है, आपने देखा होगा ना, एप्पल काट के रखेंगे थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसका रंग चॉकलेटी हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका तत्व निकल गया हवा के कारण। इसलिए फल को यदि काटना है या उसको छिलका निकालना है तो तुरंत निकाल के तुरंत खाओ, ज़्यादा समय नहीं देना, एक 10-15 मिनट ठीक है, 20 मिनट, उससे ज़्यादा हम नहीं रखना चाहिए। इसलिए सब्जी भी काटते हैं ना, तो कई जगह मैंने क्या देखा है कि लोग सब्जी पहले से काट के रखते हैं, कभी कभी पिछले दिन में भी काट के रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, सब्जी का जो पौष्टिक ये है वो खत्म हो जाता है प्राय, वैसे भी छिलका निकालते हैं, उसके बाद काट के पहले से रखते हैं तो पोषण खत्म हो जाता है उसमें। इसलिए पकाने के पहले ही सब्जी को काटना चाहिए। और सब्जी को काटते समय पकाते समय बहुत छोटा 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 नहीं बनाना चाहिए, और बहुत बड़ा बड़ा पीस भी नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उबलने की कितना टाइम लगेगा, उस समय लगेगा ना, तो मध्यम होना चाहिए। काटना है जितना सब्जी उसको कुकिंग करने के लिए मध्यम होना चाहिए। बहुत बहुत छोटा काटेंगे तो क्या होगा कि उसका जो सत्व है उसको निकलने के लिए ज़्यादा उसको जगह मिलेगा, तो ज़्यादा निकल जाएगा उसमें से सत्व। जैसे इतना बड़ा करेंगे तो कम से कम इस इधर अंदर जो है उसका सत्व तो नहीं गया, केवल बाहर का सत्व निकल गया है, समझ रहे हैं आप। इसलिए एकदम छोटा 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 नहीं करना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। बहुत बड़ा करने से भी कुकिंग नहीं हो सकता है, टाइम बहुत समय लगता है, ठीक है, तो मध्यम करना। और फल के लिए भी ऐसा ही, बहुत छोटा 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 मत काटो खाने के लिए। और एक बात है, यहाँ तो इसका समस्या नहीं है, लेकिन अलग अलग घरों में जब फ्रिज रखते हैं ना, तो कभी भी फ्रिज में नहीं रखना, चाहे सब्जी हो फल हो, बाहर के तापमान में ही रखना। यदि गर्मी में फल सब्जी खराब हो जाते हैं तो ताज़ा ताज़ा करना चाहिए, जितना हो सके ताज़ा करो। और कृत्रिम रूप से उसको ठंडा करने के बजाय यदि ठंडा रखना भी है तो मिट्टी के मटके में वो प्राकृतिक फ्रिज हो जाता है, वो मालूम है ना आपको कैसे, यहाँ भी खानापुर में बनाते हैं ना, हमारा पॉटरी का जो कुम्हार का इंस्टीट्यूट है ना उधर कॉलेज है, तो मिट्टी का मटका भी वो फ्रिज बन जाता है, या पालक हरी सब्जी वगैरह उसमें रखोगे तो ज़्यादा समय के लिए वो रहेगा। लेकिन फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, उसमें और भी उसका वो तत्व खींच लेते हैं। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि हम सब्जी खा रहे हैं फल खा रहे हैं, लेकिन इसका असर क्या होता है, असर बहुत कम होता है, फायदा बहुत कम मिलता है हमको। एक मानसिक संतुष्टि मिलती है कि हमने फल खाया सब्जी खाया, लेकिन इसका असर फर्क नहीं पड़ता है शरीर के ऊपर, क्योंकि पौष्टिक तत्व कितने निकल चुके होते हैं उसके अंदर ये सब गलत गलत काम करने के कारण। रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, पदार्थों का प्रयोग करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, छिलका निकालते हैं, छोटे छोटे टुकड़े काट देते हैं। और जहाँ तक सब्जी का बात है, सब्जियों को कई लोग ये सोचते हैं कि कच्चा सब्जी खाने से ज़्यादा हमको पौष्टिक तत्व मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं है। जो इससे 40-50% अधिक हमको तत्व मिलेगा उसको कुकिंग करके खाने से, पका के खाने से, ये आश्चर्यजनक लग सकता है परंतु ये सत्य है। जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों को पकाने से सही तरह से कम हल्के वाले आग में, बहुत ज़्यादा डाल के हल्के वाले आग में उसको पकाने से उसका तत्व जो है वो सत्व रहता है उसमें, तो हमारे तबीयत के लिए भी अच्छा है और शरीर उसको अच्छी तरह से और स्वीकार करता है, पचन के लिए भी अच्छा होता है और तत्वों को शरीर के अंदर से खींचने के लिए भी अच्छा होता है। और एक बात है, और ये इसके बारे तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में खुद गलती किया है बहुत, इसके बारे में कि अभी मैं नहीं करता हूँ, परंतु पहले मैं बहुत करता था इसे, और कभी कभी अभी भी कर लेता हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए। और वो क्या है कि भोजन के साथ फल नहीं खाना चाहिए, इसलिए ये बात मुझे प्रचार नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं खुद उसको नहीं करता था फॉलो, लेकिन है बात ये सत्य कि फल और अन्न साथ में नहीं खाना चाहिए, फल को अलग से खाना चाहिए और प्रसाद जो हमारा भोजन होता है उससे 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद जबकि पचन हो चुका होता है। तो ये सब चीजें हैं फल और सब्जी खाने और पकाने के संदर्भ में। और जो उस ऋतु में फल सब्जी होते हैं उनको खाने से ज़्यादा लाभ मिलता है, और उस स्थान में उगे हुए जो सब्जी फल है उनको खाने से ज़्यादा लाभ मिलता है। आजकल क्या होता है, विदेश से कोई कुछ फल लेके आते हैं, वो कितने महीनों तक वो फ्रिज में फ्रीज़र में रहता है, जहाज़ में चलता है, फिर वो सुपरमार्केट में जाएगा, उधर फ्रिज में रखेंगे, तो जब हम वो लेंगे उसको कितने हफ्ते बीत चुके होते हैं, इसमें उसको कोई ताकत नहीं रहती है। जो स्थानीय इलाके में है हमारे यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ गोकुल धाम में ये उद्देश्य है, हमारे यहाँ जो चीकू है, पेरू है और पपैया है, केला, यहाँ का सब खाना चाहिए। आप ऐसे जो आमटे में रहते हैं तो आमटे में खुद बनाओ उगाओ और आमटे का ही बना हुआ केला पेरू सब खाओ, हाँ इधर उधर से कोई लाने की आवश्यकता नहीं, और वही ऋतु में जो है उसको खा। तो ये सब्जी और फलों के बारे में है। ठीक है, तो ये विषय निकला कैसे, कि वो छिलके भी भोपले का हलवा किया अच्छा उससे ये विषय निकला, परंतु ये भी महत्वपूर्ण बात है ना सब्जी और फल के बारे में। अच्छा तो फिर भोपले का हलवा किया और थोड़ा उसको छिलका भी काट के कच्चे इसका किया, अच्छा फिर और क्या किया,
राई का पुलाव बनाया
था, राई का
पुलाव और रसम था उसके साथ, आलू की सब्जी थी,
अच्छा
चरण था।
कल प्रभुपाद व्यास पूजा के दिन,
हाँ फिर व्यास पूजा के दिन क्या किया, क्या क्या था,
मेरे को समझ ज्यादा नहीं था मुझे
तो कोई बताओ क्या क्या था, गुलाब जामुन,
पकौड़ा
के 4-5 वैरायटी, तो फुलवर और बैंगन और बटाटा है ना, अलग अलग वैरायटी, थोड़े फुलवर के थोड़े बटाटे के थोड़े इसके उसके ऐसे बनाए ना,
कचौड़ी
हाँ
कचौड़ी
बनाया था, अरे इधर आना चाहिए था मुझे फिर अच्छा फिर बाकरवाड़ी बना, अच्छा
चिप्स
आलू का
चिप्स,
अच्छा अच्छा बैंगन मसाला, ये जो फुलवर वगैरह होता है ना फ्लावर कॉलीफ्लावर उसका जो फूल होता है उसका होता है ना उसको भी खाना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा ये होता है ताकत, फुलवर ऐसा होता है ना फिर ऐसा होता है वो खाना जरूर, उसको काट के फेंको मत क्या
फ्लावर खाते नहीं
यहाँ पर
लाते नहीं,
हमें उगाया हुआ खाते हैं
हमारे, हम अगर उगाते हैं तो फ्लावर कंज्यूम करते हैं,
हाँ लेकिन जब खाते हो चाहे यहाँ सबसे अच्छा यहाँ का खाओ, लेकिन जब भी खाओगे तो याद रखना उसको क्या बोलते हैं, उसका जो नाला होता है ना, वो क्या डंडा होता है, उस पर भी पोषण बहुत होता है। कभी कुछ लोग तो अरे ये कड़क है उसको काट के फेंक दो, नहीं उसको भी खाना, हाँ याद रहेगा ना। बहुत अच्छा, तो आज केवल उत्सव चर्चा हो गई।
प्रभुपाद जी के बारे में प्रसाद का टाइम
नहीं, आज ऐसे इष्ट गोष्ठ किया ऐसे हल्का, लेकिन फिर भी कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हो गई। कौन सी बातें के विषय कौन से चर्चा हुए अभी आज के उत्सव का महत्व,
नित्य उत्सव, हर रोज उत्सव,
प्रतिदिन उत्सव, और
सब्जी और फल को कैसे खाना चाहिए,
सब्जी फल को कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए, दोनों
धर्म के ज्ञान का वितरण,
धर्म में के ज्ञान का वितरण भी आवश्यक है।
लोगों को कैसे
लोगों को जो बाहर उत्सव मनाते हैं उनको पता ही नहीं।
हाँ, और क्या चर्चा किया आज? यमराज डर रहे
यमदूत डर गए आप सबसे, और जितने भी खास करके गोकुलधाम के भक्तों से डर गए। और
छिलकों के साथ खाना,
भोजन के साथ फल नहीं खाना है, भोजन के साथ फल नहीं खाना है,
फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करना। और एक एक करके सब बोलते जाओ फटाफट जो भी आपने याद किया।
उत्सवों का केंद्र बिंदु है भगवान।
बहुत अच्छा, एक एक करके सब बताते जाओ जो भी मन में आए अभी याद, जो आज चर्चा किया था। बहुत अच्छा, और भक्ति जननी, और
ये हमारा
धन सब प्राकृतिक सोना चांदी गरज नहीं, असले तो ठीक है ते भगवंताना अर्पण करो, पण नसले तरी काय हरकत नाही। आणि
उत्सव में सभी अंगों को जो इंद्रियों को सेवा मिलती
है। हाँ बहुत अच्छा,
निर्गुण मुक्तेश है भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुक्ता लक्ष्मी।
बहुत अच्छा, और
भगवान की कथा प्रवचन हर जगह होना चाहिए, नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाता।
और
बाहर में लोग उत्सव मनाते हैं जैसे कि दीपावली, गणेश चतुर्थी इत्यादि, और जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन वो केवल गोविंदा आलाले मनाते हैं, कसरत करते हैं, लेकिन कम से कम भगवान श्री कृष्ण को स्मरण तो रखते हैं, करते हैं एक दिन। और जो गणेश चतुर्थी में आपने जैसे कहा कि मुंबई में बहुत गंदा गंदा नृत्य वगैरह रुके थे, क्योंकि उनको उद्देश्य पता नहीं है, और इसी के कारण सनातन धर्म का ह्रास हो चुका है और ज्ञान की अभाव के कारण।
और जो एक बार जो मैंने देखा माताजी लोग भी उधर सड़क पे कैसे कैसे नृत्य, मैं दो ये भारत में ऐसे मैं सोचा ही नहीं था ऐसे भी हो सकता है। ऐसा नृत्य, वो गाड़ी में सब लोग बैठे हैं, गाड़ी में बैठे वो लोग यही देख रहे हैं ना सब, क्योंकि ट्रैफिक सब बंद हो गया है, सब खड़ा हो, ये लोग जा रहे हैं, ये सब धर्म का हो गया ऐसा।
गांव में भी ऐसे करते हैं, गणेश चतुर्थी में डीजे लगा के जब विसर्जन करने के लिए जाते हैं, माता जी वगैरह सभी,
ठीक है माता जी लोग नृत्य करे भले, लेकिन इस तरह से नहीं करे जो, और पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए गंदी तरह से, किसी को भी नहीं करना चाहिए, है ना। ये होता है समस्या है। फिर और क्या,
और लोग इसी को आज धर्म समझते हैं,
इस चीज को आज धर्म समझते हैं।
यमुना जी का और यमुना देवी का जो भगवान की सेवा है बाहर दृष्टि से देखा तो दोनों विपरीत है, किंतु वो भगवान के लिए बहुत प्रिय है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और याद करना है कि पॉइंट
हमको भी शीरा या हलवा बनाते हैं तो मौसमी और सब छिलका से प्रयोग करना चाहिए।
छिलका भी कोशिश, एक बार कोशिश करके देखो। और
सब्जी या उबाल के खाना,
सब्जी या उबाल के खाओ, पका के खाओ। वैसे एक आध बार कोई सैलड वैलड खा लिया ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं, ककड़ी वगैरह आ गया ठीक है, ऐसा नहीं कि वर्जित है या खराब है, ऐसा नहीं। लेकिन बात केवल है कि थोड़ा पकाने से उसका पौष्टिक आहार उसका बढ़ जाता है। और
दो दिन का जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें बहुत आनंद आ गया, अगर आप रहते तो और
मुझे तो ज्यादा आनंद आता, मुझे ये पता है। तीन प्रकार चार प्रकार के पकोड़े खा लेता है ना। और क्या बात चर्चा हुई आज बताओ।
बाहर का सब्जी जो लेके आ रहे तो उसको नमक का पानी में धोना है आधे घंटे पहले,
हाँ
उपयोग करने से पहले,
हाँ। फिर उसके बाद क्या करना, नहीं फिर उसको सादा पानी से धो लेना, नमक के पानी में डाल के, जो रासायनिक चीजें से होती है ना, खास करके याद रखना द्राक्ष, द्राक्ष सबसे ज्यादा उसमें डालते हैं, वो सांगली सातारा वो सब इतना डालते हैं। और ये घरे पालक वगैरह जो लाते हैं ना हरी सब्जी, उसका भी बहुत ख्याल रखना। और इसको चमकाने के लिए वो वैक्स वगैरह लगाते हैं एप्पल को, वो लगा के उसको चमक 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 पॉलिश करने के लिए उसको, ताकि वो लगाते हैं तो चमक चमक सब लोग आके लेते हैं, परंतु बहुत हानिकारक है ये, इसलिए पहले उसको घिस के धोना चाहिए। लेकिन जब छोटे छोटे द्राक्ष होते हैं ना, तो हर एक द्राक्ष को थोड़ी हम एक 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 करके धो सकते हैं, इसलिए उसको नमक के पानी में डालना और फिर सादा पानी में उसके बाद उसको धो देना। लेकिन नमक के पानी में रखना थोड़ी देर के लिए, हाँ। और क्या कोई बात जो रह गई,
उत्सव के समय पे कथा प्रवचन पुस्तक वितरण होना चाहिए,
सब कुछ सारे जो भक्ति के अंग है सब होना चाहिए। और कोई बात, क्या उत्सव एक
ऐसी चीज है जिसकी हर कोई राह देखता है कब आएगा, तो
बच्चों को भी आनंद आया कि नहीं देखो, बच्चों के लिए भी सेवा करने के लिए कितना अवसर मिलता है, उनको भी आनंद आता है, बूढ़ों को भी आनंद आता है, जवानों को आनंद आता है। बूढ़ों के लिए पालकी
हाथी घोड़ा,
हाथी घोड़ा बूढ़ों को
पालकी।
गाँव कोई गाया कि नहीं आप सब ने, क्या गाया,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जवानों को हाथी घोड़ा बूढ़ों को
अरे बाबा उनको बूढ़ा मत बनाओ, सबसे जवान है, फूलों का सेवा करते हैं, तुलसी का सेवा करते हैं, जवानों को हाथी घोड़ा बूढ़ों को पालकी, फिर जय कन्हैया लाल। ये गाना भी गाया कल परसों,
परसों से
गाया। ठीक है, हरे कृष्णा। लेकिन बहुत अच्छा उत्सव मनाया आप सब ने, आप सब प्रसन्न है ना उत्सव के बाद, हाँ।
हाँ? पानी पूरी बनाया तो वही बताओ बोलते
हैं। अरे वाह सचमुच फीस्ट हो गया एकदम बढ़िया फीस्ट है। लेकिन सबने कितना खाया पानी पूरी 30-30, 40-40 एक एक खाया और वो इमली डाल के पानी वगैरह बनाया सब पूरी कहाँ से लाए
पूरी
अच्छा किशोर प्रभु को पानी पूरी बहुत पसंद है हमको भी खिलाते बहुत तो देखो भक्ति में कमी क्या है पानी पूरी मिलता है पकौड़ा मिलता है गुलाब जामुन जलेबी सब कुछ मिलता है सब आनंद के विषय मिल जाते हैं कोई कमी नहीं है भक्तों के लिए ठीक है। अरे क्या समय क्या हुआ अभी
10:24
हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की
जय
गौर प्रेमानंदे
हरि हरि ओम।